नमस्कार भारत, तारीख 9 सितंबर दिन शनिवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। कैरेबियाई द्वीपों में तबाही मचाने वाले इरमा तूफान को लेकर अमेरिका में चिंता, फ्लोरिडा राज्य के 5 लाख लोगों को घर खाली करने के निर्देश।
This is a storm of absolutely historic destructive potential.
हाई कोर्ट के आदेश पर डेरा सच्चा सौदा के सिरसा स्थित मुख्यालय में तलाशी अभियान।
सर्च अभियान के दौरान 5 बच्चे मिले हैं, जिसके अंदर 2 बच्चे नाबालिग हैं और 3 बच्चे मेजर हैं।
और विवेचना में बात अफगानिस्तान के बड़े योद्धा और नदर्न अलायंस के प्रमुख रहे अहमद शाह मसूद की।
ये साफ जाहिर था कि वो, जिसे अंग्रेजी में कहावत है, he is a leader of men, वो दिखता। बहुत कमों को मालूम है कि बहुत पढ़े लिखे थे, उनको अदब का शौक था।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। चक्रवातीय तूफान इरमा का कहर कैरेबियाई द्वीपों पर जारी है। अभी इरमा बहामास और क्यूबा पर से गुजर रहा है। कैरेबियाई द्वीपों पर इरमा ने भारी तबाही मचाई है और अब एक और चक्रवातीय तूफान होजे को लेकर डर बना हुआ है। आज इसके कैरेबियाई द्वीपों से टकराने की आशंका को देखते हुए पहले से ही इरमा के कारण जमींदोज हो चुके बारबाडोस द्वीप को खाली कराया गया है। वहीं अमेरिका के फ्लोरिडा में तूफान इरमा को लेकर एहतियातन हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि समय काफी कम है और लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना चाहिए। मेक्सिको के अधिकारियों के मुताबिक देश के दक्षिणी समुद्री तट पर कल आए शक्तिशाली भूकंप में के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 58 हो गई है। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने कहा है कि दक्षिणी समुद्री तट पर यह सदी का सबसे तगड़ा झटका था। भूकंप से बुरी तरह प्रभावित टेबेस्को, ओहाका और चियापस प्रांत में बड़े पैमाने पर राहत कार्य जारी है। कई जगहों पर लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। राष्ट्रपति पेना नियेटो के मुताबिक भूकंप के कारण कम से कम 200 लोग घायल हो गए हैं। नेशनल इमरजेंसी कमेटी के प्रमुख ने कहा है कि नेशनल इमरजेंसी कमेटी कल आए भूकंप के कारण फिलहाल 58 लोगों की मौत की खबर की पुष्टि करती है। अधिकारियों के मुताबिक ओहाका में 45 लोगों की मौत हो गई है और चियापस में 10 लोगों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि म्यांमार की रखाइन प्रांत में हिंसा के कारण भागकर बांग्लादेश आ रहे रोहिंग्या मुस्लिमों की संख्या करीब 2,70,000 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र की एक प्रवक्ता ने कहा है कि रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों की संख्या गुरुवार को 1,60,000 से बढ़कर अब 2,70,000 हो गई है। उन्होंने बताया कि कई नई जगहों पर रोहिंग्या मुस्लिमों के पहुंचने की जानकारी मिल रही है। उन्होंने कहा कि स्थिति काफी खतरनाक है और म्यांमार में स्थिति को संभालने के लिए जल्द कदम उठाना जरूरी है। रखाइन प्रांत में हिंसा की शुरुआत 25 अगस्त को हुई थी, जब रोहिंग्या मुस्लिम चरमपंथियों ने कई पुलिस स्थानों में आग लगा दी थी। नोबेल पुरस्कार विजेता और म्यांमार के नेता आंग सान सू ची रोहिंग्या मुस्लिमों के संकट पर चुप रहने को लेकर लगातार निशाने पर हैं। उनके नोबेल पुरस्कार को वापस लेने की मांग भी उठ रही है। नोबेल पुरस्कार संबंधित कमेटी की अध्यक्ष ने कहा है कि यह संभव नहीं है, क्योंकि यह समिति नोबेल पुरस्कार देने के बाद विजेता के काम का आकलन नहीं कर सकती है। इस बीच नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली मलाला यूसुफजई ने रोहिंग्या मुस्लिमों की मदद के लिए अपील की है।
People should react to it. Government should react to it because people are becoming displaced. They're facing.
लोगों और सरकारों को इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्योंकि लोग हिंसा और विस्थापन झेल रहे हैं। हम इसे देखकर चुप नहीं रह सकते, क्योंकि जो लोग विस्थापित हो रहे हैं वो हजारों की संख्या में हैं और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। मुझे उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और आंग सान सू ची इस मसले पर कुछ कहेंगे। ये थे मलाला यूसुफजई के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। खाड़ी देश कतर के अमीर ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को फोन कर कई महीनों से चल रहे खाड़ी संकट को सुलझाने के बारे में चर्चा की है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले खाड़ी देशों के एक गठबंधन ने कतर से रिश्ते तोड़ लिए थे। कतर के अमीर ने इस संकट को खत्म करने के लिए बातचीत की अपील की है। रिपोर्टों के मुताबिक कतर के अमीर ने सऊदी अरब और तीन अन्य अरब देशों की मांगों पर बात करने की तैयारी दिखाई है। कतर से रिश्ता तोड़ने वाले इन देशों ने उस पर चरमपंथ का समर्थन करने का आरोप लगाया था। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के अमीर से बात की थी और आतंकवाद से लड़ाई में एकजुट रहने पर जोर दिया था। उन्होंने इस मसले में मध्यस्थता की भी पेशकश की थी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com, मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। नमस्कार भारत की शुरुआत आपदा से जुड़ी उन खबरों से जिनकी वजह से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बड़ी आबादी मुश्किल में घिरी हुई है। इनमें से कुछ दिक्कतें प्रकृति की वजह से सामने आई हैं तो कुछ मुश्किलें मानव जनित हैं। मैक्सिको के दक्षिणी हिस्से में कल 8.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के असर से मरने वालों की संख्या बढ़कर 58 हो गई है। सबसे ज्यादा नुकसान खुचितान शहर में हुआ है। शहर की मेयर ग्लोरिया सांचेज ने इसे अब तक की सबसे बड़ी आपदा बताया है। राहत का काम जारी है और नुकसान का सही अनुमान अब तक नहीं लगाया जा सका है। इस बीच पोप फ्रांसिस ने कोलंबिया में भूकंप पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। इस वक्त मैं मेक्सिको में कल आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदनाएं जाहिर करना चाहूंगा। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके और उनके परिजन के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। ये थे पोप फ्रांसिस के शब्द। उधर कैरेबियाई द्वीपों में तबाही मचाने के बाद इरमा तूफान अमरीका की तरफ बढ़ रहा है। ये तूफान आज अमरीका पहुंच सकता है। तूफान की तीव्रता घटी है लेकिन अधिकारियों के मुताबिक ये अब भी काफी तबाही ला सकता है। फ्लोरिडा के गवर्नर ने चेतावनी दी है कि यहाँ के निवासियों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए वक्त काफी कम है। अपना घर छोड़कर रेड क्रॉस के शेल्टर में पहुंचे चार्ली रोसी ने कहा, ये बड़ा तूफान है, लंबे वक्त तक तेज हवाएं चलेंगी, मुझे नहीं लगता कि मैं घर में सुरक्षित रहूंगा, इसलिए कल मेरी पत्नी और मैंने फैसला किया कि हम एक पनाहगाह में चले जाएंगे। उधर हजारों किलोमीटर दूर म्यांमार से भाग रहे रोहिंग्या मुस्लिम बांग्लादेश में शरण ले रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक बीते 2 हफ्तों के दौरान 2.5 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश आए हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक प्रवक्ता दुनिया खान ने बताया,
The two refugee camps in Bangladesh, Kutupalang and Neapara,
बीते 2 हफ्ते के दौरान बांग्लादेश के 2 शरणार्थी कैंपों में लोगों की संख्या 2 गुना से ज्यादा हो चुकी है और यहाँ जगह की जरूरत है। शरणार्थियों में बड़ी संख्या महिलाओं और छोटे बच्चों की है। ये लोग थके हुए, भूखे और शरण पाने के लिए बेताब हैं। ये थे संयुक्त राष्ट्र की प्रवक्ता के शब्द। हम रोहिंग्या मुसलमानों के संकट को लेकर भारत के रुख की बात करेंगे लेकिन पहले बात इरमा तूफान की, जिसकी आहट ने अमेरिका के फ्लोरिडा में करीब 5 लाख लोगों को सुरक्षित ठिकाने खोजने के लिए मजबूर कर दिया है। ब्यौरा सुनिए हरिता कांटपाल से।
कैरेबियाई द्वीपों पर तबाही मचाने वाले चक्रवातीय तूफान इरमा को लेकर अब अमेरिका में डर फैला हुआ है। अमेरिका में संघीय आपात एजेंसी के प्रमुख ने कहा है कि इरमा फ्लोरिडा या फिर उसके पड़ोसी राज्यों के लिए विनाशकारी साबित होगा। उन्होंने कहा कि फ्लोरिडा के कई हिस्सों में कई दिनों तक बिजली गुल रह सकती है। आज इरमा के फ्लोरिडा के तट से टकराने की संभावना है और इसके चलते फ्लोरिडा में लाखों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। जॉर्जिया के गवर्नर के मुताबिक वहां पर भी आज से अटलांटिक तट को खाली कराया जाएगा। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है और इस वजह से सड़कें जाम हैं और हवाई अड्डों पर भीड़ भाड़ है। अपने साप्ताहिक संबोधन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकियों से सभी चेतावनियों को गंभीरता से लेने की अपील की है।
This is a storm of absolutely historic destructive potential.
ये तूफान ऐतिहासिक रूप से विनाशकारी साबित हो सकता है। मैं इसके रास्ते में रहने वाले सभी लोगों से सरकारी अधिकारियों की सलाह को गंभीरता से लेने और सावधान रहने की अपील करता हूँ। हमारे लोगों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। ये थे डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। इरमा ने कैरेबियाई द्वीप एंटीगा और बरबुडा, सेंट मार्टिन्स के अलावा अन्य द्वीपों पर भारी तबाही मचाई है। 1,20,00,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं और अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। बरबुडा के रहने वालों का कहना है कि 95% इमारतें वहां पर क्षतिग्रस्त हुई हैं। एंटीगा और बरबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने बीबीसी को बताया कि इन द्वीपों को मदद की जरूरत है।
I have to tell you that we definitely cannot afford it from domestic resources and we're hoping that you know friendly government
Gaston Brown ne kaha ki hum apne sansadhanon mein se ye sab nahi kar payenge ummeed hai ki mitrapurn sarkaren aur antarrashtriya sahyogi madad karenge ye mang nahi zarurat hai गैस्टन ब्राउन के शब्द। हालांकि अब इरमा को पांचवी कैटेगरी से घटाकर चौथी श्रेणी का चक्रवातीय तूफान घोषित किया गया है, लेकिन अमरीकी राष्ट्रीय मौसम सेवा के मुताबिक इरमा के फ्लोरिडा पहुंचने पर 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं बहने की संभावना है। इरमा के पीछे अटलांटिक में एक और तूफान होसे चौथी कैटेगरी का चक्रवात तूफान बन चुका है। ये इरमा के रास्ते से आगे बढ़ रहा है और इसके कारण राहत कार्य में परेशानी खड़ी हो रही है।
रिपोर्ट सुना रहे थे हरिता कांडपाल। इंडोनेशिया के बाली में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में म्यांमार के रोहिंग्या संकट पर चिंता जताई गई। सम्मेलन में एक साझा बयान भी जारी किया गया, जिसे म्यांमार सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मंच से मिली नसीहत के तौर पर देखा जा रहा है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि मंडल भी था, लेकिन उसने साझा बयान से खुद को अलग रखा। भारत ने ऐसा क्यों किया और क्या ये कूटनीतिक जोखिम है, ये समझने के लिए बीबीसी संवाददाता कुलदीप मिश्र ने पूर्व राजनयिक राकेश सूत से बात की।
जब ये वहां पर वक्तव्य जारी किया जा रहा था बाली में, उस समय प्रधानमंत्री म्यांमार में थे, तो इसलिए इस बात की ज्यादा अहमियत है कि प्रधानमंत्री म्यांमार में वहां के जो लीडर हैं उनके साथ क्या बातचीत कर रहे हैं और वहां पर उनको क्या संदेश दे रहे हैं, बनिस्बत इसके कि अगर उसमें और बाली डिक्लेरेशन में थोड़ा सा भी 19-20 का अंतर है तो ये लाजमी है कि हम लोगों को बाली डिक्लेरेशन से अपने आप को अलग करना, क्योंकि नहीं तो एक मामूली क्रिटिसिज्म सीधा ही आएगा कि देखिए वहां पर तो आप ये डिक्लेरेशन में भाग ले रहे हैं और दूसरी तरफ आपके प्रधानमंत्री जो है वो बातचीत में कुछ और कह रहे हैं।
क्या सर इससे वो एक कूटनीतिक खतरा ऐसा पैदा नहीं हो गया है कि भारत को इस तरीके से देखा जा सकता है कि सेना की ओर से जो रोहिंग्या बस्तियों में कथित तौर पर हिंसा की गई, भारत तो उसके साथ खड़ा है?
रोहिंग्या मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो इतना सहज नहीं है उसे समझना मेरी राय में, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे फंडामेंटलिस्ट तत्व भी मौजूद हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश को भी तकलीफ हो रही है। ये अब इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ आया है, कुछ कॉन्फर्मेशन ज्यादा नहीं है, पर इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक इसके अंदर कुछ न कुछ, सिर्फ एक ह्यूमन राइट्स का इशू नहीं है,
सिर्फ ह्यूमन राइट्स नहीं लेकिन ह्यूमन राइट्स की अनदेखी भी तो एकदम से लोग नहीं कर पा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो कोलेटरल डैमेज हुआ सेना की कार्रवाई से, क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ मान लीजिए सेना उतारी गई, लेकिन अगर उसका असर वहाँ आम लोगों पर पड़ा और बच्चों और महिलाओं को वहाँ से भागना पड़ा, तो कहीं ऐसा तो जोखिम नहीं भारत ने ले लिया है कि वो रोहिंग्या के आम लोगों पर जो अत्याचार हुए उसके पक्ष में कहीं भारत को न देखा जाए?
नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं समझता हूँ कि हमने उसको रोकने की कोशिश नहीं की, जो स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट नॉर्मली इस तरह के स्टेटमेंट कंसेंसस से लिए जाते हैं, तो हमने उसको ब्लॉक करने की कोशिश नहीं की। अगर हम उसको ब्लॉक करने की कोशिश करते तो शायद लोग इसके ऊपर आपत्ति उठाते, पर हम लोगों ने बाकी जो आसियान साउथ ईस्ट एशिया के मुल्क हैं उनके साथ बातचीत करके हम लोगों ने तय किया कि हम उसे अपने आप को डिसोसिएट करें।
जो लोकसभा सचिवालय ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि ये जो साझा वक्तव्य था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी टिकाऊ विकास के वैश्विक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था, इसका क्या मतलब है अगर हम इसे समझना चाहें तो?
नहीं, इसका मतलब ये है कि जो बेसिक एजेंडा था इस कॉन्फ्रेंस का वो एजेंडा ह्यूमन राइट्स का नहीं था बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का था, तो इसलिए अगर आपका एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है तो आप उससे हटकर अपने वक्तव्य में दूसरे मुद्दे जो ला रहे हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स हो, या कल को आप कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी आप वक्तव्य उसमें दे देते।
ये थे राकेश सूद। गुरमीत राम रहीम को सजा मिलने के बाद से विवादों में घिरे डेरा सच्चा सौदा के सिरसा स्थित मुख्यालय में सरकारी टीमें तलाशी ले रही हैं। ये तलाशी हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही है। तलाशी के दौरान क्या मिला और आज वहां क्या होगा, ये जानने के लिए बीबीसी संवाददाता कुलदीप मिश्र ने स्थानीय पत्रकार प्रभु दयाल से बात की।
सर्च अभियान के दौरान 5 बच्चे मिले हैं, जिसके अंदर 2 बच्चे नाबालिग हैं और 3 बच्चे मेजर हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। वाकी टॉकी एक मिला है, इसके अलावा कुछ पुरानी करेंसी और कुछ नई करेंसी मिली है।
क्या ये खबर भी जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आई कि प्लास्टिक की करेंसी या नकली नोट जैसी कोई चीज बरामद हुई है, क्या कोई हथियारों की बरामदगी या और आपत्तिजनक कोई चीजें बरामद हुई हैं?
नहीं, अभी तक कोई हथियार डेरे के अंदर से बरामद नहीं हुआ है। करेंसी उनकी अपनी ही अंदर, जो उनकी अपनी दुकानें हैं उनके अंदर उनकी अपनी प्लास्टिक की करेंसी वो चलाते थे। वो जो डेरे के फ्लावर्स हैं, जो डेरे के साधु हैं, वो उन दुकानों से जो सामान खरीदते थे उनको एक टोकन दिया जाता था, जिस टोकन को देकर वो अपना सामान वहां से खरीद लेते थे।
अभी मतलब क्या क्या स्थिति है वहां, अगर आपको किसी से जानकारी मिल पाई हो कि डेरे के भीतर कितने लोग हैं और वो जो लोग हैं उनके उनकी क्या भावनाएं हैं?
पत्रकारों को डेरे से कम 10-12 किलोमीटर दूर रखा गया है। डेरे के अंदर के सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि बाबा द्वारा बसाया गया शाह सतनाम गांव, जिसके अंदर 150 के करीब घर हैं, वो करीब करीब खाली हैं। उसके अंदर कुछ भी लोग, इक्का दुक्का लोग सूत्रों ने बताया कि हैं। सूत्रों ने यह भी बताया है कि जो खाली पड़े घर थे उनके अंदर लोग तोड़ के भी उनकी तलाशी ली गई है, लेकिन आपत्तिजनक स्थिति ऐसी कोई वस्तु मिलने की कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है।
आज भी क्या ये तलाशी अभियान है वो दोबारा शुरू होगा?
6:30 बजे रात को ये बंद कर दिया गया है। आज किसी भी समय सर्च अभियान दोबारा से शुरू हो सकता है। मुझे ये लगता है कि अभी ये लंबा चलेगा। 953 एकड़ में फैला ये डेरा, जिसके अंदर रेजिडेंस कॉलोनी है, स्टेडियम है, कॉलेज है, तो अभी ये लंबा चलेगा। अगर जो गहनता से इसका वो करेंगे तो ये लंबा चल सकता है।
ये थे प्रभुदयाल, और वक्त है अखबार की सुर्खियों पर नजर डालने का। हरिता तैयार है अखबारों के साथ, क्या खबरें हैं हरिता?
जी, आज के अखबारों में जो खबर मुख्य तौर पर मैं सभी जगह देख रही हूँ, नवभारत टाइम्स ने इस पर हेडलाइन लिखी है कि गुड़गांव के स्कूल में जो है एक 7 साल के बच्चे का मर्डर हुआ है, उसका शव टॉयलेट में से मिला था, और इस मसले में बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया गया है, स्कूल पर लापरवाही का केस दर्ज किया गया है।
मैं भी ज्यादातर अखबारों में खबर देख रहा हूँ।
जी, सभी अखबारों के पहले पन्ने पर पहली हेडलाइन है ये। इसके अलावा एक और खबर सारे अखबारों में है, जनसत्ता ने इस पर लिखा है कि बेअदब हवाई यात्रियों पर लगेगा प्रतिबंध, पहली श्रेणी इसमें मौखिक उत्पीड़न है, जानलेवा व्यवहार या फिर शारीरिक दुर्व्यवहार है, ऐसा कोई करता है तो 3 महीने से लेकर अनिश्चितकाल तक के लिए प्रतिबंध लग सकता है। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस की एक हेडलाइन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद अब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गांधीनगर गुजरात की राजधानी में जो है वहां पर मेजबानी करेंगे, और अगले हफ्ते दोनों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी।
बुलेट ट्रेन की भी शुरुआत होनी है?
बुलेट ट्रेन की, जी जी बिल्कुल,
मतलब
इसी
वो
का जो
परियोजना है
जी, उसी परियोजना को लेकर वहां पर भूमि पूजन होना है। और खास बात यह है कि जापान ही वो अकेला देश है जिसमें डोकलाम के मुद्दे पर भारत का समर्थन किया था।
बहुत शुक्रिया हरिता इस जानकारी के लिए।
बीबीसी इंडिया बोल।
गौरी लंकेश की हत्या करके हत्यारों ने क्या संदेश देने की कोशिश की है? क्या ये हत्या स्वतंत्र सोच पर हमला है? शक की सुई हिंदुत्ववादी ताकतों की ओर क्यों? इस बार इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 9 सितंबर शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब वक्त विवेचना का। अब से 16 साल पहले साल 2001 में 9 सितंबर को अमेरिका में हुए हमले से 2 दिन पहले अलकायदा के चरमपंथियों ने अफगानिस्तान के एक बड़े योद्धा और नदर्न अलायंस के प्रमुख अहमद शाह मसूद की एक आत्मघाती हमले में हत्या कर दी थी। अहमद शाह मसूद ने 10 वर्षों तक पहले रूसियों और बाद में तालिबान का सामना किया और उनके रहते पंजशेर पर कभी इनका कब्जा नहीं हो सका। मसूद के जीवन के विभिन्न पहलुओं और उनकी हत्या पर रोशनी डाल रहे हैं रेहान फजल।
नामत गेरानी मसूदे अफन हमसे तू मशूरे तौरान नामे तू सख्तस दर दफ्तरे जान नामत मुबारक।
शेरे पंजशीर के नाम से मशहूर अहमद शाह मसूद को अफगानिस्तान का राष्ट्रीय नायक माना जाता है। लोगों के जहन में वो दृश्य अभी भी ताजा है जब अप्रैल 1992 में रूसियों के अफगानिस्तान से जाने के 3 साल बाद अहमद शाह मसूद बागराम हवाई अड्डे पर सोवियत संघ में बनी एक जीप पर सवार हुए थे और टैंकों के एक कॉलम का नेतृत्व करते हुए काबुल जाने वाली सड़क पर बढ़ निकले थे। 3 घंटे बाद वो काबुल में दाखिल हुए थे। बीच में कुछ मिनटों के लिए खाली सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए वो रुके जरूर थे। दिलचस्प बात यह है कि मसूद के काबुल में दाखिल होते समय एक भी गोली नहीं चली। हालांकि कुछ दिनों पहले तक ان کے ناردرن الائنس اور گلب الدین حکمتیار اور کمیونسٹ سرکار کے سینکوں کے بیچ کابل پر فتح پانے کے لیے زبردست جنگ ہو رہی تھی۔ ودیش منترالے میں سچیو اور افغانستان میں بھارت کے راج دوت رہے ویویک کاٹجو کو ان سے کئی بار ملنے کا موقع ملا تھا۔
دیکھیے، ایک تیج تھا، یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ، جسے انگریزی میں کہاوت ہے ہی از اے لیڈر آف مین، وہ دکھتا تھا۔ یہ بہت کموں کو معلوم ہے کہ بہت پڑھے لکھے تھے، ان کو ادب کا شوق تھا، اس کے ساتھ ساتھ کشل ایڈمنسٹریٹر تھے اور بہت مہان یودھا تھے۔ مجھے یاد ہے کہ لوگوں نے بتایا مجھے کہ جب طالبان نے 1997 میں اتر افغانستان میں اپنی سیناؤں کو بھیج کے فتح پائی، مزار شریف کو اپنے گرفت میں کیا اور اس کے بعد اتر پورو افغانستان کی طرف بڑھے، تب ایک وقت یہ آیا کہ ان کے جو ساتھی تھے ان کو بھاونا یہ آئی کہ شاید پنشیر کو بھی سنبھالنا مشکل ہو، اور جتنے افغانستان کے نیتا تھے، ان کے ساتھی تھے جمعیت کے، وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کے جا رہے تھے، اور ان کی صلاح مسعود سے بھی ہوئی کہ آپ بھی چلیں کیونکہ آپ کا رہنا بہت ضروری ہے، لیکن انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، چاہے میرے پاس دو ہی یودھا بچے، میں اپنی سرزمین کو چھوڑ کے نہیں جاؤں۔
اسامہ بن لادن بھی شروع میں روسیوں کے خلاف ان کے ساتھ لڑے، لیکن بعد میں ان کے ان سے گہرے مت بھید ہو گئے۔ یہ مت بھید اس حد تک گئے کہ یہ ان کی ہتیا کا کارن بنے۔
اسامہ بن لادن تو پہلے افغان مجاہدین کے ساتھی تھے، انہوں نے بھی روسی فوج کے خلاف جنگ کی۔ بعد میں جب یہ مجاہدین آپس میں لڑتے رہے تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کی آپس میں صلح ہو جائے، وہ بھی نہیں ہوئی۔ پھر جب طالبان نے قبضہ کر لیا 1996 میں، وہ اسامہ بن لادن جلال آباد میں تھے اور طالبان کو ان کے بارے میں علم نہیں تھا، تو بعد میں ان کی جب ملاقاتیں ہوئی، صلح ہو گئی، طالبان نے پھر جو ہے اسامہ بن لادن کو پناہ دے دی اور اسامہ بن لادن نے طالبان کا ساتھ دیا۔ کیونکہ احمد شاہ مسعود طالبان کے مخالف تھے، یہ وجہ تھی کہ احمد شاہ مسعود اور اسامہ بن لادن کی آپس میں اختلافات بڑھتے گئے۔ القاعدہ جو ہے وہ طالبان کے ساتھ شامل ہو گئی، اور جو شمالی اتحاد، احمد شاہ مسعود اس کا ایک اہم حصہ تھے، وہ طالبان کی مخالف قوت تھی، اور انہوں نے پھر کبھی روس کے ساتھ اور کبھی ایران کے ساتھ اور کبھی انڈیا کے ساتھ اور کبھی بعد میں امریکہ کے ساتھ ان کا ایک اتحاد ہو گیا۔
9/11 سے دو دن پہلے یعنی 9 ستمبر 2001 کو مسعود اپنے ٹھکانے خوجے بہاؤدین میں بیٹھے ہوئے تھے، تبھی ان کا انٹرویو کرنے آئے دو پترکاروں نے، جنہیں کتھت روپ سے القاعدہ نے بھیجا تھا، ایک آتم گھاتی دھماکہ کیا جس میں احمد شاہ مسعود مارے گئے۔
24 minutes past 8. Now there is confusion about the fate of the main opposition leader in Afghanistan. Ahmed Shah Massoud is reported by some sources to have been killed by a suicide bomber at the weekend.
مسعود خلیلی کی احمد شاہ مسعود سے 20 سال پرانی دوستی رہی ہے۔ اس سمے وہ اسپین میں افغانستان کے راجدوت ہیں۔ ستمبر 2001 میں احمد شاہ مسعود نے خلیلی سے انوروھ کیا تھا کہ وہ ان سے ملنے افغانستان آئیں۔ اس سمے مسعود خلیلی بھارت میں رہ رہے تھے۔ 8 ستمبر کی رات دونوں دوست صبح 3:30 بجے تک باتیں کرتے رہے۔ راجنیتی، سینا، القاعدہ، ہار، جیت، نہ جانے کتنے وشیوں پر ان کی بات چیت ہوئی۔ دیر سے سونے کے باوجود 9 ستمبر کو دونوں جلدی اٹھے۔ کمانڈر مسعود نے خلیلی کو ایک سرپرائز دینا چاہا۔
When I woke up, I saw that a boy was bringing me coffee, just instant coffee, which I didn't like it also.
میں جب جاگا تو میں نے دیکھا ایک لڑکا میرے لیے کافی لیے چلا آ رہا ہے، انسٹنٹ کافی، جسے میں بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا، لیکن میرے منہ سے نکلا مجاہدین اور کافی، بڑی اچھی بات ہے۔ لڑکے نے کہا کمانڈر نے خاص طور سے آپ کے لیے بھیجی ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ آپ کافی پسند کرتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب مسعود آئے تو انہوں نے پہلا سوال یہی پوچھا، کیا تمہیں میری بھیجی کافی ملی؟ میں نے کہا آپ کی بہت مہربانی۔
دو پترکار پچھلے 2 ہفتوں سے احمد شاہ مسعود سے ملنے کی کوشش کر رہے تھے، حالانکہ وہ کافی ویست تھے، لیکن پھر بھی وہ ان سے ملنے کے لیے تیار ہو گئے۔ خلیلی کو، جو کہ سوالوں کا انواد کرنے کے لیے مسعود کے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، لگا کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔
The boy who was there, very young and with smiles, happy, and later on I couldn't believe myself that he knew he would be killed.
जो लड़के मसूद का इंटरव्यू लेने आए थे, उम्र में वो काफ़ी कम थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और वो बहुत खुश दिखाई देते थे। बाद में मुझे खुद इसका यकीन नहीं हुआ कि उन्हें पता था कि वो मारे जाएंगे। कैमरामैन लंबा था, घुंघराले बाल थे उसके। कमांडर ने कहा, पहले अपने सवाल बता दीजिए। वो अपने सवाल बताने लगा। कुल 14-15 सवाल थे, उनमें से करीब 8 सवाल ओसामा बिन लादेन पर थे। मैंने जब उनसे पूछा कि आप किस अखबार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उन्होंने एक झटके से जवाब दिया, मैं पत्रकार नहीं हूं। हम इस्लामिक संगठन के सदस्य हैं जो पेरिस, लंदन और दुनिया में हर जगह फैला हुआ है। मैंने कमांडर से अपनी जबान में कहा, ये लोग तो दूसरी तरफ के हैं।
तभी उस लड़के ने आत्मघाती बम का बटन दबा दिया। बम का असर इतना जबरदस्त था कि इससे पूरे कमरे में आग लग गई।
The room was burning totally. That boy was in pieces. The other had escaped. I made a mistake at that time. I thought that in the camera was a bomb. It was not.
कमरा पूरी तरह से जल रहा था। उस लड़के के चीथड़े उड़ गए थे। दूसरा लड़का भाग निकला था। मुझसे उस समय एक गलती हुई। मैंने समझा कि कैमरे में बम था, जबकि ऐसा नहीं था। लड़के के जिस्म के कई हिस्से हो गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि उसके जिस्म में ही कुछ लगा हुआ था, शायद आत्मघाती जैकेट या कुछ और।
उस विस्फोट में अहमद शाह मसूद बुरी तरह से घायल हुए। उनका एक और सहयोगी मारा गया। मसूद खलीली भी बुरी तरह से घायल हुए थे। लंबी बेहोशी में जाने से पहले उन्हें सिर्फ एक चीज याद है कि जिस हेलीकॉप्टर में उन्हें ले जाया जा रहा था, उसमें कुछ सेकंडों के लिए उन्हें होश आया था।
I remember that in the helicopter I opened my eyes for a second and I saw commander beside me. The last glance or the last moment I saw him was that time and I saw blood first time on his face.
मुझे याद है हेलीकॉप्टर में मैंने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें खोली थी और मैंने कमांडर को अपने बगल में पड़े हुए देखा था। शायद आखिरी बार मेरी नजर उनके ऊपर गई और मैंने खून से सना उनका चेहरा देखा था। मैंने अपने आप को उनके पास धकेलने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि ओ कमांडर अपनी आखिरी सांस ले रहे हैं।
मसूद की तजिकिस्तान जाते हुए उसी हेलीकॉप्टर में मौत हो गई। मसूद खलीली का कई दिनों तक जर्मनी में इलाज चला। वो अहमद शाह मसूद की मौत से पहले का एक दिन आज तक नहीं भूल पाए हैं, जब वो और मसूद देर रात तक फारसी कवि हाफिज की कविताएं पढ़ रहे थे।
درخت دوستی بنشان که کام دل ببار آرد نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد شب صحبت غنیمت دان
اپنے دل سے دشمنی کے انکروں کو ہٹا دو محبت کے بیج بو اور اس کے پیڑ لگاؤ آج کی رات تم دونوں ساتھ ہو بہت سی راتیں جائیں گی اور بہت سے دن بھی گزریں گے तुम दोनों भी एक दूसरे को देख नहीं पाओगे, कभी भी नहीं। उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा था। इसके कितने गहरे माने हैं। मुझे याद है जब कई दिनों बाद मुझे अस्पताल में होश आया तो मेरी पत्नी मेरा पासपोर्ट लाकर बोली, ये क्या है? उसके एक पन्ने पर 8 नुकीली कीलें धंसी हुई थीं। मैंने कहा, क्या ही अच्छा होता अगर कमांडर ने मेरा पासपोर्ट मेरी जेब में न रखकर अपनी जेब में रखा होता। अफगानिस्तान को मुझसे कहीं ज्यादा उनकी जरूरत थी।
अहमद शाह मसूद की अंत्येष्टि में लाखों अफगान लोगों ने भाग लिया था। अफगानिस्तान में आज भी अहमद शाह मसूद की मौत का दिन मसूद दिवस के रूप में मनाया जाता है।
نامت گرامی مسعود افغان اما سعی تو مشهور دوران نام تو ثبت است در دفتر جان نامت
مبارد ریحان فضل BBC دلی
رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانی ویویچنا پر آپ کی بھی رائے کا ہمیں رہے گا انتظار आपसे विदा लें उसके पहले मुख्य समाचार एक बार फिर हरिता कांडपाल से।
BBC समाचार। چکرواتی طوفان ارما کا قہر کیریبیائی دویپوں بہاماس اور کیوبا پر جاری. ایک اور چکرواتی طوفان ہوزے کو لے کر ساودھانی برتی جا رہی ہے. امریکہ کے فلوریڈا میں طوفان ارما کو لے کر احتیاطاً ہزاروں لوگوں کو سرکشت ستھانوں پر بھیجا گیا. میکسیکو کے ادھیکاریوں کے مطابق دیش کے دکشن سمندری تٹ پر کل آئے شکتیشالی بھوکمپ میں مرنے والوں کی سنکھیا 58 ہو گئی ہے. سنیکت راشٹر نے کہا ہے کہ میانمار کے رکھائن پرانت میں ہنسا کے کارن بھاگ کر بنگلہ دیش آ رہے روہنگیا مسلموں کی سنکھیا قریب 270,000 ہو گئی ہے. بی بی سی سماچار.
نمسکار بھارت میں آج اتنا ہی. اسٹوڈیو کی کمان تھی شاکر عالم کے ہاتھ. فیس بک لائیو آپ تک پہنچایا مانشی داس نے. شام 7:30 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کارکرم ہوگا انڈیا بول. تب تک خبروں کے اپڈیٹ کے لیے آپ رک کر سکتے ہیں bbchindi.com کا. واتسل رائے کو دیجیے انومتی. نمسکار.